अन्वय ने आन्या को गुस्से में खींचकर कमरे में ले गया। आन्या की नाजुक कलाई में दर्द होने लगा। उसने अन्वय का हाथ हटाने की कोशिश करते हुए कहा, अन्वय हाथ छोड़ो मेरा, मुझे दर्द हो रहा है। पहले तुम जवाब दो, क्या बकवास कर रही थी इतनी देर से? अन्वय ने उसकी कलाई पकड़ी हुई थी। उसने आन्या को अपने सामने खड़ा कर दिया और गुस्से से घूरने लगा। आन्या पहले से ही गुस्से में थी, दर्द के कारण उसका गुस्सा और बढ़ गया। वो बोली, वही जो सच है, तुम रोज बालकनी में जाकर शर्टलेस होकर एक्सरसाइज करते हो ताकि आसपास रहने वाली लड़कियों को अपनी बॉडी दिखाकर इम्प्रेस कर सको। अच्छा ठीक है, तुम्हारी बात मान लेता हूँ, पर अगर मैं ऐसा करता भी हूँ तो तुम्हें क्यों इतना गुस्सा आ रहा है? मेरी जिंदगी में मैं जो चाहे करूँ, कम से कम तुम्हारे साथ तो कुछ गलत नहीं कर रहा, फिर तुम क्यों इतना भड़क रही हो? अन्वय के गुस्से भरे सवाल से आन्या कुछ पल असमंजस में उसे देखती रही। फिर उसने बात संभालते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ इसलिए तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ। वो लड़कियाँ तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। देखा नहीं था कैसे लालसा भरी निगाहों से तुम्हें देख रही थी? तुम्हारी बॉडी देखकर मुंह से लाल टपका रही थी, जैसे तुम्हें खा जाएंगी। बस इसलिए कह रही थी कि ऐसे शर्टलेस होकर बाहर मत निकला करो, इन लड़कियों की नज़र लग जाएगी तुम्हें, फिर तुम्हारे सारे मसल्स और एब्स की हवा निकल जाएगी तो कितने अजीब लगोगे तुम। अन्वय उसकी बातों से हैरान परेशान उसे देखता ही रह गया। फिर चिढ़कर उसने उसके सर पर उंगली से मारते हुए कहा, बेवकूफ़ लड़की, तुम्हारा कभी कुछ नहीं हो सकता। आन्या ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। उसने अपनी हथेली उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, वादा करो कि अब तुम कभी शर्ट उतारकर बालकनी में नहीं जाओगे और उन छिछोरी लड़कियों की तरफ तो आंख उठाकर देखोगे भी नहीं। क्यों, क्या बुराई है अगर मैं उन्हें देख भी लूँ? ठीक है दिखती हैं, अन्वय ने भौंच काकर सवाल किया। आन्या चिढ़ते हुए बोली, अगर तुमने उन्हें देखा भी तो मैं तुम्हारी आंखें नोच लूंगी, समझे? तुम मेरे अलावा किसी लड़की को नहीं देख सकते। और वो क्यों? अन्वय ने जानबूझकर उसे परेशान करते हुए सवाल किया। आन्या ने उसे घूरते हुए कहा, क्योंकि मैं कह रही हूँ कि तुम मेरे अलावा किसी लड़की को नहीं देख सकते, मतलब नहीं देख सकते। और तुम हो कौन ये डिसाइड करने वाली कि मुझे किसे देखना चाहिए और किसे नहीं? अन्वय ने फिर सवाल किया। आन्या ने घूरते हुए झट से जवाब दिया, मैं तुम्हारी रूममेट हूँ तो ये ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी है कि तुम किसी गलत लड़की के झांसे में ना फंस जाओ। मैं लड़की हूँ तो दूसरी लड़की के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है ये तुमसे बेहतर समझ सकती हूँ, इसलिए इस मामले में तुम मेरी बात मानोगे और उन्हें बिल्कुल नहीं देखोगे। क्यों, क्या बुराई है उनमें? मुझे तो अच्छी लगी, अन्वय ने जानबूझकर लबों पर हल्की मुस्कान लाते हुए कहा। आन्या का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो चिल्लाते हुए बोली, तुम्हें कुछ नहीं पता, मैंने कहा ना वो लड़कियां तुम्हारे लिए ठीक नहीं हैं, मतलब नहीं है वो तुम्हारे लिए ठीक, इसलिए तुम अब से उन्हें देखोगे भी नहीं और बात तो बिल्कुल नहीं करोगे। अच्छा, अगर वो मेरे लिए ठीक नहीं है तो कौन है जो मेरे लिए बनी है? अगर मैं तुम्हारे अलावा किसी से बात नहीं करूंगा तो क्या सारी जिंदगी अकेला बिताऊंगा? अन्वय ने उसकी मन की बात जानने के लिए अनजाने में ही ये सवाल कर दिया। आन्या ने झट से कहा, अकेले क्यों रहोगे, मैं रहूंगी ना तुम्हारे साथ हमेशा हर पल। और तुम मेरे साथ हमेशा क्यों रहोगी? अन्वय ने उसकी ओर कदम बढ़ाते हुए उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए सवाल किया। आन्या घबराई हुई सी उसे देखने लगी। उसे समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। फिर कुछ सोचकर उसने जवाब दिया, क्योंकि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और ऐसी छिछोरी लड़कियों से तुम्हें बचाना मेरा फर्ज है। एक लड़की दूसरी लड़की को बेहतर समझ सकती है, ये लड़कियां बिल्कुल भी तुम्हारे लायक नहीं है। सबकी सब तुम्हारी बॉडी और हैंडसम चेहरे के लिए तुम में दिलचस्पी ले रही हैं, उन्हें तुमसे तो कोई प्यार व्यार है नहीं, इसलिए तुम्हें इनसे दूर रहना चाहिए। अच्छा, तो अगर मुझे हर लड़की से दूर रहना चाहिए तो क्या तुम्हारे पास रहना चाहिए? अगर दुनिया में हर लड़की मेरे लिए सही नहीं है तो क्या तुम हो मेरे लिए सही? अगर ये सब मेरी बॉडी और हैंडसम चेहरे पर दीवानी है तो क्या तुम मेरी सीरत पर मरती हो? उसके एक के बाद एक सवालों से आन्या स्तब्ध रह गई। अन्वय की गहरी निगाहें जो उस पर ही टिकी थी उसके दिमाग को काम नहीं करने दे रही थी। वो एकदम खाली सी उसके सामने खड़ी थी, जुबान से शब्द ही नहीं निकल सके। अन्वय उसके एकदम सामने खड़ा था। आन्या की खामोशी देखकर अन्वय ने अपनी उंगली से उसके गालों पर झूलती लटों को उसके कान के पीछे करते हुए धीमी मदहोशी भरी आवाज में एक बार फिर उससे सवाल किया, जवाब दो, अगर तुम्हारी नज़र में बाकी लड़कियां मेरे लायक नहीं हैं तो क्या तुम वो लड़की हो जो मेरे लिए बनी है? अगर वो सब मेरे चेहरे और बॉडी पर मरती हैं तो क्या तुम मेरी रूह की कायल हो, दीवानी हो मेरी? मेरे बदन की नहीं, मेरी चाह है तुम्हें। आन्या कुछ कह ही नहीं पा रही थी, दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। दिल उसकी करीबी या शायद उसके सवालों को सुनने के कारण जोरों से धड़कने लगा था। सांसें ऊपर नीचे हो रही थी और आन्या की घबराई हुई निगाहें अन्वय की काली गहरी आंखों की गहराइयों में खो गई थी। उसे खुद का ही होश नहीं था। अन्वय की छुअन से वो बर्फ की तरह पिघलती जा रही थी। अजीब से एहसासों से दो चार हो रही थी जिसे समझ भी नहीं पा रही थी।
जब आनिया ने कोई जवाब नहीं दिया तो अन्वई उसकी कमर पर अपनी बाह लपेटकर उसे अपने करीब खींच लिया। आनिया की आंखें हैरानी से फैल गईं। दिल तो ऐसे धड़कने लगा जैसे बस बाहर आने ही वाला हो। वो अपनी बड़ी बड़ी पलकों को फड़फड़ाते हुए उसे घबराई हुई सी देखने लगी। अन्वई ने एक बार फिर उसकी घबराई निगाहों पर अपनी स्थिर निगाहों को टिकाते हुए सवाल किया, जवाब दो, क्या तुम मेरी दीवानी हो इसलिए मुझे किसी और के साथ आगे बढ़ने से मना कर रही हो? जलन हो रही है तुम्हें इसलिए इतना भड़क रही थी तुम? बिल्कुल नहीं, मुझे भला क्यों जलन होने लगी किसी से, और मैं कोई तुम्हारी दीवानी नहीं हूँ। तुम में ऐसा कुछ है ही नहीं कि मुझे अपना दीवानी बना सको। आन्या अब वापस अपने रूप में लौट चुकी थी। उसने अन्वय के हाथ को हटाना चाहा ताकि उससे दूर हट सके, पर अन्वय ने अपनी पकड़ कसते हुए उसे अपने और करीब कर लिया। आन्या एक बार फिर घबराई हुई सी पलकें झपकाते हुए उसे देखने लगी।